ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम श्रद्धे प्रातृवंद्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम, जिनकी कृपा से विगत कई वर्षों से ये सत्संग की अमृत धारा निरंतर प्रवाहित होती जा रही है। इस आश्रम के सभी सम्माननीय ट्रस्टीज, मेंबर्स और उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, गत वर्ष हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय की व्याख्या 40वें श्लोक तक कर चुके थे, जिसमें क्रिया कारक और फल का वर्णन था। फल के रूप में त्रिविध सुखों की वहां पर बात कही गई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब ये जो त्रिविध सुख हैं, ये कैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक हो जाते हैं, इसकी बात अब यहां पर कर रहे हैं। मनुष्य के स्वभाव के कारण पूरा का पूरा संसार क्रिया कारक और फल रूप है। हम कर्म करते हैं, क्रिया करनी होती है, और क्रिया का कोई साधन है जैसे शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, और उसका हमें फल मिलता है सुख या दुख के रूप में। यही सारा संसार है और ये सारा का सारा भगवान की माया से होता है, क्योंकि भगवान की माया त्रिगुणात्मिका है। तीनों गुण उसमें पहले से ही हैं, इसलिए व्यक्ति के स्वभाव भी त्रिगुणात्मक है। और कम और ज्यादा करने से शास्त्रों में व्यक्ति को चार भागों में बांटा गया है, जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। और ये वर्ण व्यवस्था जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उस समय गुण और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का विधान था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी, विस्तार होने लगा, और महाभारत के बाद ये चतुर्वर्ण जन्म के आधार पर इनको मान्यता मिली। उपनिषदों में आता है, यदि कोई उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण भी जघन्य कर्म करता है तो वह निम्न वर्ण को प्राप्त हो जाता है, और निम्न वर्ण का व्यक्ति भी यदि कोई उत्तम कर्म करता है तो वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है, और ऐसा उपनिषदों में वर्णन है। गाडीवान रैक्व मुनि शूद्र थे लेकिन ब्रह्म विद्या उनके पास थी, इसलिए राजा स्वयं उनके पास सोना चांदी रथ लेकर के और अपने कन्या लेकर के उनके पास पहुंचते हैं ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने के लिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अन्य पुराणों में भी इस तरह के अनेक उदाहरण हैं, लेकिन आज समस्या यह है कि जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से, क्योंकि समाज का ताना बाना इस तरह से बन चुका है, किसको कर्म से माने। ब्राह्मण है वो ब्राह्मण अपने कर्मों पर रहे नहीं, लगभग 80% ब्राह्मण अपने ब्राह्मण वृत्ति को छोड़कर के अभक्ष भक्षण और अपेय पान करने लग गए। क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म पर नहीं रहे, वैश्य अपने वैश्य धर्म पर नहीं रहे। गुण कर्म स्वभाव आज के समय बहुत मुश्किल है, इसलिए महापुरुषों ने एक नियम निकाला कि मान और सम्मान गुण और स्वभाव के अनुसार हो और जाति जन्म से हो। यह सब महाभारत के बाद की व्यवस्थाएं इस तरह से हुई, इसलिए महाभारत के बाद आने वाले सभी आचार्यों ने जाति को महत्व दिया, जन्म से गुण और कर्म को महत्व कम दिया। गोस्वामी जी ने ही लिख दिया कि ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों न हो वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी गुणवान क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, फिर भी वो पूजनीय नहीं है। ये क्यों लिखा? तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था इसी प्रकार से थी, और उसी प्रकार से शास्त्रों में कुछ प्रक्षेप भी किया गया, क्योंकि कलम ब्राह्मणों के हाथ में थी, जैसा वो चाहते थे वैसा लिख भी देते थे। विकार आता है, सभी में आता है। हमारी संस्कृति को 2 अरब वर्ष हो गए, इन 2 अरब वर्षों में थोड़ा बहुत विकार आना स्वाभाविक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बात तो अब चिंतन की है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। पहले जिसको हम कहते थे कि अगर शूद्र की छाया भी पड़ जाए तो स्नान करना चाहिए, आज परिस्थितियां बदलती है, और शंकराचार्य रामानुजाचार्य पद पर बैठे हुए लोग भी बनारस में भंगी के घर भोजन करने के लिए जाते हैं, इसलिए कि आप हमसे अलग नहीं हैं। ये परिस्थितियां हैं, समय है, मांग है, और जैसी परिस्थितियां होती है समाज उस प्रकार का बनता हुआ चला जाता है। तो यह आवरण व्यवस्था आप देखिए, भागवत आप पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? 100 थे। तो ऋषभदेव क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे या शूद्र थे, बताऊं? हाँ? राजा कौन होता था? क्षत्रिय होता था, और क्षत्रिय राजा थे तो उसके पुत्र क्या हुए? लेकिन उसमें कितने ब्राह्मण बने? वो तो सिद्ध हो गए, ब्राह्मण कितने बने? 81। 9 हो गए सिद्ध, और 9 हो गए क्षत्रिय, 9 द्वीपों के अधिपति बनाए गए, और 1 राजा ऋषभदेव के कौन हुए? भरत। ये भागवत पुराण की मैं आपको बात बता रहा हूं, और उनका सम्मान भी उसी प्रकार से होता था। और ऐसे आप अनेक उदाहरण देखेंगे कि जिस समय ब्राह्मण क्षत्रिय के यहां विवाह करते और क्षत्रिय ब्राह्मण के यहां भी विवाह करते, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार थी, बाद में ये जन्म के आधार पर होगी। और महाभारत के बाद आने वाले सभी आचार्यों ने उसको जन्म के आधार पर व्याख्या किया। और अब ये परिस्थिति कि आप गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि वातावरण बदल गया, समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, जीने का ढंग बदल गया, सबका व्यवहार बदल गया। तो आज तो यही ठीक है कि जाति जन्म से हो और सम्मान गुण और कर्म से हो, प्रतिष्ठा हो गुण और कर्म से। तो ये स्वभाव जैसा जैसा होता उसी के अनुसार हमें सात्विक राजसिक तामसिक सुखों की प्राप्ति होती है, और उन्हीं त्रिगुणों के कारण ये चातुर्वर्ण्य की बात यहां पर कही गई है। 41वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का, क्योंकि 40 श्लोक तक हम व्याख्या कर चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुण ही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके कर्मों का प्रविभाग विभाजन किया गया, डिवाइडेशन किस आधार पर? स्वभाव प्रभवी ही गुण ही, स्वभाव के कारण। किसके कारण किया गया? स्वभाव। अब भगवान भाष्यकार यहां स्वभाव का तीन अर्थ ग्रहण करते हैं, बड़ा सुंदर है। पहला अर्थ उन्होंने किया स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृति ही, स्वभाव माने ईश्वर की प्रकृति अर्थात माया। तो माया का क्या स्वभाव है? त्रिगुणात्मिका, तीन गुणों से युक्त है वो, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। जब पूरा संसार ही सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण है, संसार के सभी पदार्थों में और संसार के या माया से बने हुए सभी चीजों में ये तीनों गुण विद्यमान होंगे ही, क्योंकि मूल में ही तीन गुण है। हमारा शरीर माया से बना, मन बुद्धि माया से बने, इंद्रियां माया से बनी, इसलिए इनके अंदर ये तीन गुण स्वाभाविक ही है। इसलिए माया के कारण, प्रकृति के कारण, स्वभाव के कारण भगवद गीता में आता है ना, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम। स्वभावस्तु प्रवर्तते, दोनों भगवद गीता में स्वभावस्तु प्रवर्तते, व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार वह प्रवृत्ति करता है। और प्रकृति यान्ति भूतानि, जैसी जिसकी प्रकृति है यानी स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रकृति है, जैसा जिसका स्वभाव है उसके अनुसार वो कर्म करता है। तो यहां स्वभाव का अर्थ भगवान भाष्यकार आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने तीन अर्थ किए, जिसमें पहला अर्थ उन्होंने कहा भगवान की माया ईश्वरस्य प्रकृति ही। तो प्रकृति में तीन गुण होने के कारण इन प्राणियों में भी तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। अब इसमें क्या हुआ, सत्वगुण प्रधान जिसमें रजोगुण गौण होता है, तमोगुण नाम मात्र का होता है, होते तीनों गुण हैं। सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण है, सत्वगुण गौण रजोगुण प्रधान क्षत्रिय है, और रजोगुण गौण तमोगुण प्रधान वैश्य है, और रजोगुण की मात्रा बहुत कम रह जाती है और तमोगुण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती तो वो शूद्र कहलाता है। शुचाद् द्रव्यते इति शूद्रः। अब इनके कर्मों का विभाजन क्या? दूसरा अर्थ किया भगवान ने, अथवा ब्राह्मण स्वभावस्य सत्वगुण प्रभव कारण। ब्राह्मण का स्वभाव सत्वगुण प्रधान होता है, इसलिए वह उसके कर्मों का कारण है। सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण होता है। अब यहां पर एक और बात सामने आ गई कि जो सत्वगुण प्रधान नहीं है वह ब्राह्मण हो गया ना बात। अच्छा, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं तो व्याख्या प्रवचन है ना, प्रवचन तो जब तक वार्तालाप भी संवाद ना हो तो भी अधूरा सा ही रहता नहीं। आज परशुराम को आप क्या कहेंगे, बहुत बताइए। देखो यहां इसलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए गुरुमुख की आवश्यकता होती है, मनमुख की नहीं होती। अब बताओ परशुराम को क्या कहेंगे। आप तो क्षत्रिय कह रहे हैं, श्री राम जी कह रहे हैं आप ब्राह्मण, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे। नहीं तो हम काल से भी युद्ध करने के लिए पीछे हटने वाले ब्राह्मण। भगवान राम परशुराम को क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं, द्विज कह रहे हैं, द्विज कह रहे हैं ना, और आप क्षत्रिय कह रहे हैं, बताइए परशुराम को क्या कहेंगे। तो क्या उनका स्वभाव सत्वगुण प्रधान था, तमोगुण था? हाँ, ये जरा विचार करने की बात है ना। जो सत्वगुण प्रधान होता है वह ब्राह्मण होता है। अब क्या है, स्वाभाविक गुण तो सत्वगुण ही था परशुराम में, लेकिन निमित्त प्राप्त होने पर उनके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति आ जाती थी। दुर्वासा को क्या कहेंगे, बताओ हैं? ब्राह्मण कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन क्रोध तो बहुत आता था। अच्छा एक बात, जो परशुराम और दुर्वासा के बारे में बहुत भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, मूल बात यह कि दुर्वासा के शाप से किसी का बुरा नहीं हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति बताओ दुर्वासा ने शाप दिया और उसका अहित हुआ हो? क्योंकि वह शाप नैमित्तिक था, जब बुरा कर्म किया तो उन्होंने निमित्त उपस्थित हो गया। परशुराम ने कहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों का, ऐसा कहते हैं ना, और रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, रामायण में तो थोड़ा फर्क है पर रामचरितमानस में आप देखिए, भूप सहस दसे कही बारा, कितने राजे इकट्ठे हुए, कहां से आए वो, परशुराम तो थे, बताओ। जब 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया, किया ना 21 बार, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और रामचरितमानस में लिखा है भूप सहस दस एक ही बारा, टरे टरावन टर ही न टारा, नहीं लगे उठावन टर ही न टारा। अब बताइए जब 21 बार क्षत्रियों का संहार जिसने किया हो, 10,000 राजा कहां से आ गए? अच्छा 10,000 राजा तो उपस्थित थे, बहुत से ऐसे भी राजा होंगे जो उपस्थित नहीं हुए होंगे, 20-25,000 आए भी नहीं होंगे, नहीं 20-25,000 के पास सूचना भी नहीं पहुंची होगी। क्यों, उस समय कोई पेपर नहीं छपते थे, वायरलेस नहीं थे, फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था। 10,000 तो वहां एक साथ आए, 10,000 आए भी नहीं होंगे, 10,000 को पता भी नहीं चला होगा, 10,000ों ने सोचा होगा चलो क्या जाना छोड़ो, नहीं, कितने राजा हो गए? तो 21 बार क्षत्रियों का संहार कैसे किया? अच्छा रामायण की बात लेते हैं, ये तो रामचरितमानस की हुई। रामायण में क्या है, रामायण में एक ही समय समय पर राजा आते थे, कभी कोई आया कभी कोई आया, परीक्षा करते थे धनुष को उठाने की, नहीं उठता था तो चले जाते थे। उसी क्रम से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे हैं और वो सफल हो गए, विवाह हो गया। तो जब जाने लगे तो अयोध्या और जनकपुरी है ना, उसको मिथिला बोलते हैं, अयोध्या और मिथिला के बीच में परशुराम उनको मिले हैं, विवाह आदि सब कुछ हो गया था उनका। अब विचार करो, यदि 21 बार क्षत्रियों का संहार किया रामायण के अनुसार, तो दशरथ कहां से आए, जनक कहां से आए। बीच बीच में जो समय समय पर राजा आते थे और अपने शौर्य का तेज का परीक्षण करते थे, वो कहां से आए। अब बताओ आप परशुराम को क्या कहेंगे। ये तो आपके सामने चित्र उपस्थित किया जो अब हमें उपलब्ध होता उसका, बोलो ऐसा ही है या नहीं है। फिर क्या परशुराम ने 21 बार पूरे क्षत्रियों का संहार किया। एक गलत धारणा परशुराम के बारे में प्रचलित है। परशुराम ने केवल और केवल है ये वंश के दुष्ट राजाओं का संहार किया था। किनका किया था? कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन जो है वंश में पैदा हुए थे, उन दुष्ट राजाओं का ही उन्होंने संहार किया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार जरासंध को भगाया, ऐसे ही परशुराम से इकट्ठा हो होकर के वो 21 बार युद्ध करने के लिए आए थे। तो दुष्ट राजाओं का जिन्होंने संहार किया, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा, तो वो स्वभाव से ब्राह्मण थे। लेकिन जब उनके पिता का वध हो गया, माता का वध हो गया, उन कार्तवीर्य सहस्रबाहु अर्जुन के द्वारा उनके पिता की गाय का हरण कर लिया गया, तो एक निमित्त उपस्थित हो गया और उस निमित्त से उनको क्रोध आया। और जब निमित्त से उनको क्रोध आया तो उन्होंने कहा, अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः ससरम धनुः, मेरे मुख में चारों वेद उपस्थित हैं और मेरे पीठ पर धनुष है, तीर के साथ सशरम शर के साथ धनुष है। आप शास्त्रार्थ में आ जाइए, शास्त्रादपि शस्त्रादपि। आप शास्त्रार्थ में आइए या शस्त्र में आइए। अच्छा अब आप देखिए, मैं आपको अब की बात बताता हूं। लगभग ये विजयनगर की स्थापना हुई, कृष्णदेव राय ने की थी, मालूम है ना विजयवाड़ा, जो आज विजयवाड़ा कहते हैं उसको, उसकी स्थापना हुई। तो उसकी स्थापना कराने वाले एक ब्राह्मण थे, पंडित थे, माधवाचार्य, जो सायणाचार्य के बड़े भाई थे, ठीक है ना। अब आपने सायणाचार्य के बारे में कितना पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, कितना आप जानते हैं, लेकिन सायणाचार्य विश्व के सबसे पहले ऐसे संपादक हुए हैं जिन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन किया, उनके ऊपर कलम चलाई और वेदों का कुछ भाष्य भी किया, ब्राह्मण ग्रंथों पर, आर्यनक पर, सब पर कलम चलाई। नाम सुना होगा आपने सायणाचार्य का? नहीं सुना? सुना है ना, सुना होगा आपने तो। लेकिन वे ही सायणाचार्य जब युद्ध के मैदान में उतरते थे तो क्षत्रिय कांपते थे उनसे, और ब्राह्मण थे वो, ब्राह्मण थे। अरे मैं सायणाचार्य की बात कर रहा हूं, मैं सायणाचार्य की बात कर रहा हूं। जब मैं विजयनगर की बात कर रहा हूं, मैं तो बात कर ही ना रहा महाभारत के युद्ध की, कुरुक्षेत्र के युद्ध की। विजयवाड़ा, विजयनगर जो इस समय आंध्रा में है, उसकी बात कर रहा हूं। और वो युद्ध करते थे, अच्छे अच्छे राजा जो अपने आप को बहुत बड़े क्षत्रिय समझते थे, सायणाचार्य की तलवार से वो घबराते थे। तो सायणाचार्य को आप क्या कहेंगे। तो थोड़ा यहां पर ध्यान देना, एक है स्वभाव और एक है निमित्त। परिस्थिति आने पर क्रोध करना अलग बात है, लेकिन मूल जो स्वभाव है, मूल जो स्वभाव है, ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसका मूल स्वभाव सत्वगुण प्रधान होता है। परशुराम ने दुष्ट राजा हैहे वंश के जो कार्तवीर्य सहस्रबाहु अर्जुन हुए थे उनका, उनके मित्रों का और उनके वंशजों में जो दुष्ट थे उन्हीं का संहार किया, सभी का नहीं किया था। शायणाचार्य वैदिक धर्म की स्थापना के लिए जो माध्वाचार्य ने हुक्का और बुक्का जो बदमाश थे उस समय, जिसको डकैत कहते हैं, उनको अपने पास लेकर के जंगल में राज तिलक करके और फिर जिस विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, जहां वेद और वेदांग की प्रतिष्ठा हुई, जहां भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पूरे विश्व में प्रचार हुआ, उसकी रक्षा के लिए वो तलवार उठाते थे निमित्त उपस्थित हो जाने पर। ये निमित्त उपस्थित हो जाने पर तलवार उठाते थे, इसलिए ध्यान रखना। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऋषि ने श्राप दिया। अच्छा देखो, भागवत में तो श्राप देने वाले सारे ब्राह्मण हैं, सबको क्रोध आना, चाहे वो देवल हो, चाहे वो नारद हो, चाहे वो अंगिरा हो, चाहे वो दुर्वासा हो, चाहे कोई भी हो। नहीं, विश्वामित्र ने दिया, दिया या नहीं दिया, किसको? अरे आप ढूंढना है। खैर, जो मैं ये बता रहा हूं मूल बात आपको, कि जो स्वभाव है, स्वभाव जिसके अंदर सत्वगुण प्रधान है, सत्वगुण, ऐसा सत्वगुण प्रधान व्यक्ति ब्राह्मण होता है, अथवा ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसमें सत्वगुण की प्रधानता हो। ये आज उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है भाई, है ना? हम आज के संदर्भ में किसी ब्राह्मण क्षेत्रीय वेश की व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि मूल रूप से आज ब्राह्मण ने ब्राह्मणत्व खो दिया, क्षत्रिय ने क्षत्रियत्व खो दिया, वैश्य ने वैश्यत्व खो दिया। अब आप देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ऐसे वर्ण हैं जहां पैसे की प्रधानता नहीं है, पैसा प्रधान केवल वैश्य के पास है। और आज जब पैसे की प्रधानता ब्राह्मण और क्षत्रियों में आ गई तो देश और राष्ट्र का पतन हुआ है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि क्षत्रिय का काम था, अभी बताएंगे, चलो आएगा तब। अथवा ब्राह्मण स्वभाव से सत्वगुण प्रभाव कारणम, तथा क्षत्रिय स्वभाव से सत्वोपसर्जनम रज प्रभाव। रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की न्यूनता जिसमें हो उसको क्षत्रिय कहा गया है। अब देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिए, सत्वगुण गौण है लेकिन सत्वगुण कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ, रजोगुण थोड़ा सा बढ़ा है। तो जिसमें सत्वगुण की मात्रा हो ज्यादा, रजोगुण की उससे ज्यादा हो, तो उसमें प्रवृत्ति तो ज्यादा होगी लेकिन उसकी प्रवृत्ति अधर्म और अन्याय के प्रति नहीं होगी। इसीलिए भागवत में जब आप प्रारंभ करते हैं भागवत, उस समय कली को देख करके राजा परीक्षित क्या कहते हैं, बताइए, बताओ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे जैसे क्षत्रिय के रहते हुए तुम्हारे जैसे अधर्म मेरे राज्य में नहीं रह सकते, इसलिए हे अधर्म बंधु तुम यहां से चले जाओ, कलियुग को कह रहे हैं। तो क्षत्रिय सत्वगुण उसमें है लेकिन रजोगुण डोमिनेट कर रहा है सत्वगुण को, फिर भी उसके अंदर अधर्म और अन्याय के प्रति कोई इच्छा नहीं है, वो धर्म और न्याय के साथ ही खड़ा है। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न च पलायनम, अर्जुन की दो ही प्रतिज्ञा है, दीनता भी नहीं और पलायन भी नहीं। भगवान राम क्षत्रिय थे ना, और क्षत्रिय होकर के अधर्म और अन्याय को बाहर निकाल दिया था इस देश में, और उस समय पूरा विश्व राम का दीवाना हो गया था। लेकिन युद्ध के मैदान में खड़े होने के बाद आज भी एक लोकोक्ति एक कहावत है संस्कृत में, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम और रावण के युद्ध की तुलना किससे दी जाए, किसी से नहीं दी जा सकती। इसलिए राम और रावण का युद्ध तो मानो राम और रावण का ही युद्ध था। आप सोच सकते हो अगर रावण का भाई घायल होकर के राम की सेना में आ गया और संध्या का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया, राम ससम्मान उसको वापस वहां भिजवाते थे, दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद उसको मारते थे। क्या कोई कल्पना कर सकता है एक शत्रु सेना की बहू पुत्रवधू और राम के पास निर्भीक होकर के आ जाए कि मैं उस व्यक्ति को देखना चाहती हूं जिसने मेरे पति का वध किया हो, क्या आज ऐसा संभव है? अरे छत्रपति शिवाजी के बारे में आपने सुना है, सुना है ना, क्या कहा था? काश अगर इससे मैं पैदा हुआ होता। कहा था या नहीं कहा था? ये क्षत्रिय है जो अधर्म और अनीति में जिसका पैर नहीं जाता, क्योंकि उसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक है। मतलब ये समझो कि जिसे कहते ना भाई टेरिकोट देना 60-40 है ना, कहते हैं ना, तो आप ऐसा समझो 65-35 का रेशियो समझ लो है? तो सत्वगुण की अधिकता है, रजोगुण डोमिनेट कर रहा है, तो उसके अंदर प्रवृत्ति है कर्म की, लेकिन कर्म की प्रवृत्ति होने पर भी वह अधर्म और अन्याय की तरफ नहीं जा रहा है। वैश्य स्वभावस्य तम उपसर्जनम रजः प्रभावः। वैश्य का स्वभाव में तम गुण होता है, रज प्रधान होता है। क्षत्रिय के स्वभाव में भी रजो प्रधान होता है लेकिन सत्व गुण होता है, वैश्य के स्वभाव में भी रज प्रधान होता है लेकिन तम गुण होता है, यानी तम की मात्रा ज्यादा हो जाती है और सत्व गुण की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए वो व्यापार करता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के जब स्वभाव का वर्णन बताएंगे तो उसमें वृत्ति का बात नहीं की भगवान कृष्ण ने, वृत्ति माने कमाई के साधन है ना, जीविका के साधन की बात नहीं कही, मनुस्मृति में तो है, यहां नहीं है, लेकिन वैश्य का जो स्वभाव बताया उसमें जीविका के ही साधन है। क्यों? क्योंकि उसमें रजोगुण प्रधान हो जाता है, तमोगुण गौण हो जाता है और सत्वगुण और भी न्यून हो जाता, कम हो जाता है। और शूद्रस्य स्वभाव रज उपसर्जनम तमः प्रभावः। शूद्र का स्वभाव रजोगुण गौण हो जाता है तमोगुण, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो क्या होता है? दंभो दर्पो अभिमानस्य, है ना, दंभ दर्प आ जाता है, आलस्य और प्रमाद आ जाता है, तंद्रा आ जाती है। अकर्मण्यता आ जाती है, आलस्य आ जाता है। इसलिए ये स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था की बात कही। अच्छा, एक और भगवान श्री कृष्ण ने तो यहां नहीं कहा, शास्त्र में कहा है कि जिसमें तम ज्यादा अधिक हो जाता है उसको अंत्यज कहा है। तम की अधिक मात्रा, बस दिन भर कुछ नहीं करना, जंगल में जाना, पशु मारना, दारू पीना, खाना पीना और कुछ नहीं करना, पशु की तरह से जीवन जीना, ये सब स्वभाव है। दूसरी बात कही, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना ये। हाँ, ये गीता माता है, गीता क्या है, है ना, कहा ना इसके लिए, अम्बे त्वाम अनुसंधामी, हे मां मैं तुम्हारा प्रतिदिन अनुसंधान करता हूं, चिंतन करता हूं, है ना, मां है। तो इसका विग्रह होगा श्रीमद् भगवद गीता का, फिर जब मां कहेंगे तो विग्रह क्या होगा, श्रीमती भगवती गीता। समझ गए ना, श्रीमती। तो मां जैसे बच्चों को अपना सब कुछ देना चाहती है, ऐसी श्रीमद् भगवद गीता भी साधकों को, जिज्ञासुओं को अपना सब कुछ प्रकट कर देना। भगवान शंकराचार्य फिर एक अर्थ करते हैं, अथवा जन्मांतर कृत संस्कार प्राणिनाम वर्तमान जन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभावः स प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभाव प्रभवः गुणः। अब यहां पर कार्य कारण सिद्धांत उपस्थित हो जाता है। इसको फिलोसॉफिकल लैंग्वेज जो इंग्लिश है, इंग्लिश में इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र में इसको कारण सिद्धांत कहा, कारण कार्य सिद्धांत। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। एक व्यक्ति का स्वभाव सत्वगुण प्रधान है, एक का रजोगुण प्रधान है, एक का रजोगुण तमोगुण मिश्रित प्रधान है, एक का तमोगुण प्रधान है। ये ऐसा क्यों हुआ, कोई न कोई तो कारण होगा। कोई भजन गाते ना, भजन तो देखो मेरे को आता नहीं, कोई कोई लाइन याद आ जाती लाइन, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे रे, कोई कारण होगा, है ना। कारण, कॉज एंड इफेक्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण कार्य सिद्धांत। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं यहां भी कारण कार्य सिद्धांत है। और कारण कार्य सिद्धांत क्या है, पूर्व जन्म के कर्म, समझ रहे हैं ना, पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमारे संस्कार पड़ते हैं, वासना बनती है, पूर्व जन्म के कर्म के फल के अनुसार हमारा जन्म होता है, और वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं, और उसी संस्कारों के कारण स्वभाव बनता है, उन्हीं संस्कारों के कारण स्वभाव बनता है। जन्मांतर कृत संस्कार प्राणिनाम वर्त जन्मानानी जन्मनी स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के संस्कार इस जन्म में प्राणी के अंदर उद्भूत होते हैं, वो उसके स्वभाव के कारण बनते हैं। आपको विश्वास है या नहीं इस बात पर, डू यू बिलीव और नॉट, विश्वास करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अच्छा एक बात और देखो, मानो ब्राह्मण जाति ले लो, जन्म से ही ले लो, तो क्या सभी ब्राह्मण जन्म से ही सत्वगुण होते हैं जीवन भर, क्या सभी क्षत्रिय रजोगुण प्रधान होते हैं। आम भी और शशिगुप्त ने समर्पण कर दिया, लेकिन पौरु ने युद्ध किया, अफगानिस्तान इस समय जिस है, पहले वहां आम भी और शशिगुप्त का राज था, अलेक्जेंडर ने जब आक्रमण किया सिकंदर ने, पौरु ने युद्ध किया, तीनों ही तो क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों में भी आप देखिए, कोई जन्म से ही सत्वगुण प्रधान होता है और कोई जन्म से ही दुष्ट गुण प्रधान होता है, दुष्ट प्रवृत्ति वाला होता है। ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमारे वर्तमान जीवन में काम करते हैं। अच्छा एक और बात है, आप कहते हो कि भाई पूर्व जन्म के संस्कार ही हैं, तो इस जन्म में उसको क्यों सुधारे, नहीं, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे नदी का वेग बह रहा है, अब आप बताओ आजकल नदियां मोड़ दी गई या नहीं मोड़ दी गई, दिशाएं बदल दी या नहीं बदलती। ऐसे ही योग दर्शन में एक बहुत सुंदर बात कही, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, वहति पापाय वहति कल्याणाय, चित्त एक नदी है, संस्कार वासना जिसको आप बोलो, मन बोलो, चित्त एक नदी है और वह चित्त रूपी नदी दोनों तरफ बहने वाली है, पाप की तरफ भी और कल्याण की तरफ भी। तो अब क्या करना है, जो नदी का प्रवाह पाप की ओर जा रहा है उसके ऊपर एक बांध बना देना है, एक डैम खड़ा कर देना बांध, तो उसकी धारा किधर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए प्रबल संकल्प की आवश्यकता होती है, कर्म की नहीं, संकल्प की। क्योंकि संकल्प की प्रबलता होगी तो कर्म में दृढ़ता अपने आप आ जाएगी और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि हमारा भविष्य काल हमारे वर्तमान काल पर ही निर्भर है। जैसे हमारा वर्तमान काल भूतकाल के अनुसार हमें मिला है, ऐसी अब जो करेंगे वही हमें आगे मिलने वाला है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? आम खाना हो तो आम का पेड़ बोना पड़ेगा, और भाई बबूल खाना हो तो उसके लिए ऊंट बनना पड़ेगा। आपको मालूम है ऊंट बहुत प्यार से खाता है कटीली झाड़ियों को, है ना, बहुत चाव से खाता है कटीली झाड़ियों को। तो मेरा कहने का भाव समझना, कहीं ऐसा नहीं समझना कि हमें महाराज क्या कह रहे हैं। क्योंकि आजकल ये जो है ना राजनीति, ये बड़ी खतरनाक हो रही है। कभी कभी भावों को नहीं समझते, कभी कभी शब्दों को पकड़ करके। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि अगर कुत्ता भी सामने आ जाए तो भी दर्द होता है। उसका मतलब किसी को कुत्ता बनाना नहीं था, बताना नहीं था। वो तो एक उदाहरण द्वारा बता रहे थे कि व्यक्ति के सामने, कोई भी गाड़ी के सामने आ जाए तो दर्द तो होता ही है। कितना बवंडर मचाया था, इसलिए आप बवंडर मत मचाना, क्योंकि आप राजनेता नहीं है यहां पर, है? तो ऐसा ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्यों ने प्राप्त होगी। अच्छा, कई बार होता क्या है, देखो एक बात बताएं आपको, थोड़ा सा विचार करो। एक व्यक्ति पांच सब्जेक्ट्स में पेपर दिए, उसने मैथमेटिक्स में उसके आए 40 नंबर, जस्ट पास मार्किंग। फिजिक्स में उसके आ गए 85, केमिस्ट्री में आए 95, दूसरे सब्जेक्ट में किसी में 50 और किसी में 60 आए, तो टोटल में वो पास है या नहीं है? लेकिन डिवीजन में फर्क पड़ जाएगा ना, 95% तो नहीं माने जाएंगे उसके, ना उसके 40% माने जाएंगे। तो ऐसे ही जब व्यक्ति शुभाशुभ कर्म करता है तो दोनों शुभाशुभ कर्मों के मिश्रण से व्यक्ति का स्वभाव बनता है। तो किसी को अच्छा जन्म मिल जाता है घर में, कुल में सुख संपत्ति सुविधा पूर्वक, और किसी को अच्छे कुल में जन्म मिलने के बाद भी 95% एक सब्जेक्ट में लेने के बाद भी 40% जो नंबर लिया है वो उसको, हाँ, बड़े बड़े घराने में जन्म लेने वाले जन्म से ही पागल हमने देखे हैं, विकलांग हमने देखे हैं। कहीं तो अच्छे कर्म किए कि उसने अच्छे घर में जन्म लिया, लेकिन कहीं बुरे कर्म भी किए कि मनुष्य जन्म लेने के बाद भी उसे सुख और सुविधाओं का पता नहीं है। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म के मिश्रण का फल है हमें मनुष्य जन्म मिला, जिसमें अच्छे कर्मों की प्रधानता है और बुरे कर्मों की गौणता है। बुरे कर्म गौण हो जाते हैं, अच्छे कर्म प्रधान हो जाते हैं। इसलिए हमें वर्तमान जीवन को अच्छा बनाना चाहिए ताकि हमारा भविष्य का जीवन सुंदर बने, अच्छा बने। कल मैंने एक को मैसेज किया कि सोमवार प्रारंभ हो गया, वो श्रावण मास प्रारंभ हो गया। आपका तो नहीं हुआ, अभी 15 दिन बाद में होगा, हमारा तो श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। तो आप क्या स्पेशल पूजा कर रहे हैं? तो वहां से जवाब आया कि मैंने 100 बार नमामि शमीशान निर्वाण रूपम रुद्राष्टकम का पाठ किया है और आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए। ये क्या है कि स्वभाव से सत्वगुण प्रधान, क्या है स्वभाव से। अब जब स्वभाव से ही सत्वगुण की प्रधानता हो गई तो आने वाला समय उसके लिए सूर्य के समान दे दीप्यमान है, प्रकाशमान है। और यही श्रावण मास प्रारंभ हो गया, आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, श्रावण मास में उसका यौवन है वर्षा ऋतु का। और कोई कहे कि वर्षा ऋतु का यौवन है, चलो पहाड़ों में जाएंगे या कहां कहां, या बॉम्बे के आसपास जो भी एरिए हैं, एक्स वाई जेड जो भी आप समझ लो, पिकनिक मना के आएंगे, बारिश का मजा लेंगे, तो उसका भविष्य कैसा होगा। इसलिए समझदार व्यक्ति को अभी से ही संभल जाना चाहिए, अभी से ही संभल जाना चाहिए। और हमारे शास्त्र का तो नियम है भाई, संभलने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, भाव और संस्कार बदले जाते हैं। खटवांग राजा ने कितने वर्ष लगा करके भगवान को प्राप्त किया है? कितने वर्ष लगे? 2.5 घड़ी है ना, 2 मुहूर्त है ना, 2 मुहूर्त। 2 मुहूर्त में खट्टांग राजा ने भगवान को प्राप्त कर लिया, केवल अपने भाव बदले और संकल्प से यथार्थ में सभी वस्तुओं का परित्याग कर दिया। सभी वस्तुओं के परित्याग का मतलब देह के प्रति ममत्व भाव को खत्म कर दिया। अच्छा, भागवत में ही है, धृतराष्ट्र को कितना समय लगा? 5-6 दिन बस, इससे ज्यादा तो नहीं लगा। अच्छा, परीक्षित को कितना समय लगा? नहीं नहीं, 8 दिन नहीं लगे। आप भागवत पढ़िए, जिस समय सुखदेव ने उपदेश देना प्रारंभ किया उसके कुछ काल बाद ही उसने अपना सबसे ममत्व समाप्त कर दिया। और भागवत की दूसरे स्कंद में लिखा है वो आत्मभाव को प्राप्त हो गए, आत्मभावम दृढ़म गतः, ऐसा शब्द है। आत्मभाव को यानी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, बाकी समय तो वो कालक्षेप के लिए कथा सुन रहे थे। भाई समय व्यतीत करना है तो अच्छी तरह व्यतीत किया जाए, समय व्यतीत करना है तो अच्छी तरह समय बिताया जाए, बाकी के 7 दिन 6 दिन तो उन्होंने कालक्षेप के लिए कथा सुनी थी। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में उम्र की बात नहीं कही गई है, आपको एक दृढ़ भाव लेकर के आना है अपने आप को बदलने के लिए। यह मत समझना कि महाराज बुढ़ापा हो गए हम कैसे सुधरेंगे। सुधरना हाथ पैर से नहीं होता, सुधरना भाव से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है, जीवन में इन्हीं से सब सुधार होता है। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनुष्य के जन्म भी, यानी जन्म का मतलब पूर्व जन्म के किए हुए कर्म संस्कार भी स्वभाव में कारण बनते हैं। कोई जन्म से ही दुर्धर्ष होता है, कोई जन्म से ही सत्वगुण प्रधान होता है, कोई जन्म से ही आलसी और प्रमादी होता है, और कोई जन्म से ही नाप तोल करने लग जाता है, ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, करता है ना। ये जन्म भी इसमें कारण है, परमात्मा की माया भी इसमें कारण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी इसमें कारण है। आप कहोगे किसको माने हम, बात एक ही है, कहने के 3 ढंग है लेकिन बात, क्योंकि मूल में तो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ही हैं। सात्विक कर्म करने से सत्वगुण की वृद्धि होती है, धर्म और न्याय पूर्वक रजोगुण प्रधान कर्म करने से रजोगुण की वृद्धि होती है, थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला करने से है ना, देखो अब हम बोलेंगे नहीं, आप समझदार हो समझ लेना है? एक सेठ जी थी, वो कहने लगे महाराज भगवान का नाम इतना ही लेना चाहिए जितना आटे में नमक। कितना लेना चाहिए, अब भाषा है ना उनकी। हमने कहा भाई अगर नमक में आटा जितना ले ले तो क्या नुकसान हो जाएगा है? अगर नमक में आटा जितना ले ले तो क्या नुकसान हो जाएगा? तो ये भाषा है, ये संस्कार बोलते हैं ना। तो देखो ये भी है, ये सही बात बता रहा हूं आपको, झूठ नहीं कह रहा। वह भगवान के पीछे भी ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा हर चीज की ज्यादा बुरी होती है। भगवान का नाम भी उतना लो जितना आटे में नमक। अरे भाई ये भी स्वभाव है, ये भी स्वभाव है। और एक कहता है कि क्या भगवान भगवान होता है, कर्म करो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये भी स्वभाव है। इसलिए ये जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, अब इसमें क्या है, एक मिनट में और बात बता देता हूं लास्ट वाली। सत्वगुण जो शूद्र है, आप कहोगे सत्वगुण तो ब्राह्मण होता नहीं, तमोगुण रहने पर भी सत्वगुण और रजोगुण रहती हैं, वो ब्राह्मण की सेवा करे, रजोगुण क्षत्रिय की सेवा करे क्योंकि उसी के काम का है वो, और तमोगुण की मात्रा रजोगुण से ज्यादा है तो वैश्य की सेवा करे, तमोगुण है तो खुद ही सेवा लाए क्यों किसकी सेवा करेगा है ना। तो कहने का अर्थ है कि सत्वगुण प्रधान यदि शूद्र ब्राह्मण की सेवा करेगा तो धीरे 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 उसके अंदर सत्वगुण की प्रधानता आएगी, अपने कर्मों में सुधार होगा और वो भी जन्मांतर में फिर सत्वगुण प्रधान के रूप में जन्म लेगा। ऐसे रजोगुण में क्षत्रिय की सेवा करेगा तो लोक में सम्मान बढ़ेगा उसका, बढ़ेगा ना भाई, राजा का बहुत नजदीक है। और तमोगुण प्रधान की सेवा करेगा तो धन दौलत पैसा बढ़ेगा उसके पास, ये बढ़ेगा। तो अब ये जो शूद्र हैं, ये तो महाराज महाभारत की युद्ध के बाद कुछ दुर्दशा ऐसी आई कि हमने गांव से बाहर निकाल दिए, और इतिहास पढ़ करके देखो जिनको हम आजकल हरिजन कहते हैं, हरिजन कहते हैं ना आजकल, हालांकि जब फार्म भरा जाता है तब वो भी अपने आप को चमार ही लिखते हैं, लेकिन चमार कहने से भी दंड है। वो ज्यादातर क्षत्रिय थे, कौन थे, मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाना चाहा, नहीं बनाया तो उनसे मेला डुबाया, ज्यादातर क्षत्रिय थे, आप पढ़ लो इतिहास। लेकिन समाज का ताना बाना कुछ अज्ञानता के कारण ऐसा बन गया कि हमने उनको अपने से दूर रख दिया, और उसकी दुर्दशा हिंदू आज तक भोग रहा है। चलो उन सब बातों पर विचार नहीं करते, भगवद गीता के 41वें श्लोक की आज व्याख्या की, कल इससे आगे व्याख्या करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।